असहयोग आंदोलन 1920 1922 20वीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवा दमन के उसे और कुछ न देगी। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों 1919 का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत देना। इससे भी असंतोष और उभरा। मुसलमानों को महसूस होने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें भी धोखा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, पर बाद में वे मुकर गए। भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। उन्हें लगा कि अब तुर्की के धर्म स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारतीय मुसलमान इससे बहुत क्षुब्ध हुए। गांधी जी और उन जैसे तमाम लोग जो यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में उपद्रवों की निष्पक्ष जांच होगी और ब्रिटिश सरकार तथा जनता इसकी एक स्वर से निंदा करेगी, अब निराश हो चले थे। हंटर कमेटी द्वारा इन घटनाओं की जांच जिस तरह की जा रही थी उससे ये लोग काफ़ी क्षुब्ध थे। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया था और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष इकट्ठा किया था। यह सारी कारगुजारियां अंग्रेजी हुकूमत का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी थीं। अप्रैल 1920 तक ब्रिटिश सरकार के पास अपने गलत कदमों को सही ठहराने के सारे तर्क चूक गए थे। खिलाफत नेताओं से साफ साफ कह दिया गया था कि वे अब और अधिक उम्मीदें न रखें। तुर्की के साथ 1920 में हुई संधि इस बात का सबूत थी कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है। गांधी जी को इससे भी गहरा दुख पहुँचा। वह खिलाफत नेताओं के दोस्त थे। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। गांधी जी को भी एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने धोखा दिया है। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। इसी बीच कांग्रेस को भी महसूस होने लगा था कि संवैधानिक तौर तरीकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पंजाब उपद्रवों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट से भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी। कांग्रेस ने खुद इन घटनाओं की जाँच कराई और सच का पता लगाया। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत के रवैये से क्षुब्ध कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को तैयार थी। मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित करने का फैसला किया गया। उद्देश्य था आगे की रणनीति तय करना। देश की जनता भी अंग्रेजी हुकूमत से खार खाए बैठी थी। इससे पहले के 4 दशकों के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता के एक बहुत बड़े तबके को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया था। अंग्रेजी हुकूमत की धोखेबाजी और दमन से जनता कसमसा उठी थी। उसे लग रहा था कि अब चुप रहना कायरता होगी। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों ने भी जनता को संघर्ष के लिए उकसाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। नगरों और कस्बों में रहने वाले मजदूर, दस्तकार, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग सभी परेशान थे। खाद्यान्नों की कमी तो थी ही, कीमतें भी आसमान छू रही थी, मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह क्रम समाप्त नहीं हुआ। गांवों में किसान और खेतिहर मजदूर सूखा, महामारी और प्लेग से जूझ रहे थे। इन महामारियों की चपेट में आकर हजारों लोग मर गए। इस तरह शहरों, गाँवों और कस्बों में सभी जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग कसमसा रहे थे। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने भर की जरूरत थी। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी ने 22 जून को ही वायसराय को एक नोटिस दिया था जिसमें लिखा था कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। 1 अगस्त को ही प्रातः तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन पर शोक और आंदोलन की शुरुआत, दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। पूरे देश में हड़ताल मनाई गई, प्रदर्शन हुए, सभाएं आयोजित की गईं और कुछ लोगों ने उपवास रखा।